ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में जारी जल संकट और हरियाणा सरकार से पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह आज दूसरे दिन भी जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम आरआरटीएस कॉरिडोर का दूसरा डिपो मेरठ के पास मोदीपुरम में तैयार किया जा रहा है। और उत्तर रेलवे सोमवार से अंबाला और सहरसा के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली में जारी जल संकट और हरियाणा सरकार से पानी की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह आज दूसरे दिन भी जारी रहा। मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो अनशन पर बैठी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने आज उनके अनशन स्थल पर आकर बाधा डालने की कोशिश की। जल मंत्री ने कहा कि जब तक दिल्लीवासियों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता, वो अनशन पर बैठी रहेंगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के जल संकट और अनशन स्थल पर बाधा डालने को राजनीति से प्रेरित बताया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि राजधानी को आज भी वर्ष 1994 में तय किए गए कोटे के अनुसार पानी मिल रहा है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है।
1994 में आज की तुलना में आबादी कम थी, तब भी हमारा पानी का जो कोटा था वो 1005 एमजीडी था। आज 94 से लेके 30 साल बीत गए, 30 साल में दिल्ली की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। बावजूद इसके दिल्ली का जो पानी का कोटा है वो बढ़ाया नहीं गया, 1005 एमजीडी पानी ही दिल्ली को मिल रहा है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा है कि दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में हरियाणा सरकार कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि सब प्रयास करने और विफल होने के बाद जल मंत्री आतिशी को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ा है।
हम ये नहीं कह रहे कि हमें अतिरिक्त पानी दें, जितना पानी हमको नॉर्मल डेज में देते हैं उतना पानी हमको बराबर दें। हरियाणा गवर्नमेंट को प्रार्थना करने पर वो पानी नहीं दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन न जल मंत्री ने सुना, न हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुना और न एलजी साहब ने प्रयास किया। परिणाम स्वरूप आतिशी जी को अनशन पर बैठना पड़ा है।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के पानी सत्याग्रह को भाजपा ने सत्याग्रह की मूल भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि मंत्री आतिशी का सत्याग्रह महज दिखावा है। वे केवल 4 घंटे अनशन स्थल पर बैठी रही हैं और बाकी समय मंच के पीछे एयर कंडीशन कमरे में गुजार रही हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री आतिशी वही प्रशासनिक अराजकता दिखा रही हैं जो जनवरी 2014 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजपथ पर धरने पर बैठकर दिखाई थी। श्री सचदेवा ने कहा कि यदि जल मंत्री आतिशी को लगता है कि शहर में पानी की कमी है और हरियाणा सरकार अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं करवा रही है, तो वो पंजाब सरकार से पानी ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और वो मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर सकती हैं। दिल्ली में जारी जल संकट और इस पर हो रही राजनीति पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि उन्हें ये देखकर अजीब लगता है कि राजनीतिक रूप से चुनी गई सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो विपक्ष में हो। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच राजधानी में पानी की आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। श्री सक्सेना ने कहा कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है, लेकिन दोनों ही राज्य तय संधि के अनुसार ही पानी देने के लिए बाध्य हैं। राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए न तो कोई ठोस कदम उठाए और न ही राज्यों से बेहतर बातचीत की दिशा में कोई काम किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। समिति परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के उपायों, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एजेंसी की संरचना तथा कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी और सुधार संबंधी सुझाव देगी। साथ ही एनटीए के भीतर स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी। समिति वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का भी आकलन करेगी और आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव करेगी। समिति से 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के सदस्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के पूर्व प्रोफेसर राममूर्ति के और आईआईटी दिल्ली में डीन प्रोफेसर आदित्य शामिल हैं। समिति के गठन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का हित और उज्ज्वल भविष्य हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार पारदर्शी, धांधली और त्रुटि मुक्त परीक्षाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन, परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों पर रोक, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में समग्र बदलाव की दिशा में पहला कदम है। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस वर्ष की संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि इसके आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भृतृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर ऋण लचीले हैं, लेकिन कुछ ऋण नागरिक केंद्रित सुधारों और क्षेत्र विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं को लागू करने वाले राज्यों पर सशर्त हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद के यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम आरआरटीएस कॉरिडोर का दूसरा डिपो मोदीपुरम में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहां एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है।
एनसीआरटीसी ने बताया है कि आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो दोनों सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए मोदीपुरम डिपो स्टेशन को मेरठ हरिद्वार मुख्य मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। एनसीआरटीसी ने बताया है कि मोदीपुरम डिपो में ट्रेनों के लिए स्टेबलिंग लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां नमो भारत और मेरठ मेट्रो की कुल 34 ट्रेन खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा रेलों की स्वचालित सफाई के लिए वॉशिंग प्लांट भी लगाए जाएंगे। मेरठ मेट्रो के अंतर्गत मेरठ क्षेत्र में कुल 13 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कई का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। करिश्मा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे सोमवार से अम्बाला और सहरसा के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी अम्बाला कैंट से शाम के 7:45 पर सहरसा के लिए प्रस्थान करेगी, जो बुधवार को सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। रास्ते में ये रेलगाड़ी सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जंक्शन पर रुकेगी। ये रेलगाड़ी सिर्फ एक ही फेरा लगाएगी और इसमें शयनयान और सामान्य डिब्बे होंगे। हरियाणा के उद्योग, वाणिज्य और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के विकास कार्यों का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शहर के नाले और पीने के पानी की लाइन का भी संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सीवर के पानी की निकासी का उचित प्रबंध कराने के आदेश दिए। इसके अलावा 5 दिन के अंदर कार्य प्रगति रिपोर्ट दिखाने के लिए भी कहा गया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विकास कार्यों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर आज भाजपा ने चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर से ईदगाह रोड तक स्थित संत कबीरदास स्थानक तक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शोभा यात्रा में शामिल होकर संत कबीरदास को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि अपने दोहों से समरसता का संदेश देने वाले संत कबीरदास जी का हम सभी के जीवन पर बाल्यकाल से ही प्रभाव पड़ा है, जो हमें सर्वधर्म संभाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास अंधविश्वास और आडंबरों का विरोध करते थे। राजधानी में कल देर रात हुई बारिश से आज दिनभर मौसम सामान्य बना रहा, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में जारी जल संकट और हरियाणा सरकार से पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह आज दूसरे दिन भी जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम आरआरटीएस कॉरिडोर का दूसरा डिपो मेरठ के पास मोदीपुरम में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।